तो चलिए आज संक्षेप में समझते हैं स्वाध्याय और सत्संग पुस्तक के दूसरे अध्याय मनुष्य पर परिस्थितियों का प्रभाव को। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा आइडिया है ना, वो ये है कि हमारा स्वभाव जन्म से तय नहीं होता। पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि हम सब एक कोरे कागज की तरह हैं और हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारी संगति है, वही हमारी पूरी कहानी लिखती है। तो इसमें तीन खास बातें हैं, आइए समझते हैं। पहली बात, हम असल में अपनी परिस्थितियों के ही बनाए हुए हैं। विद्वान बेकन ने भी कहा था, मनुष्य कोरे कागज के समान है। सोचिए, हमारा माहौल ही तो तय करता है कि हम क्या सही मानते हैं और क्या गलत। जैसे एक ही काम, मान लीजिए पशु वध, एक संस्कृति में धर्म है तो दूसरी में अधर्म, और दोनों ही अपनी अपनी जगह खुद को सही मानते हैं। ये सब संगति का ही तो असर है। तो फिर सवाल ये है कि अगर हम इतने मजबूर हैं तो करें क्या। यहीं पर आता है दूसरा पॉइंट, उन्नति का रास्ता है सत्संग, यानी कि अच्छी संगति, क्योंकि हमारा मन हमारी संगति से बनता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमें जानबूझकर अच्छी संगत चुननी चाहिए। पुराने जमाने में तीर्थ यात्रा का मकसद भी तो यही था, श्रेष्ठ लोगों से मिलकर उनके गुण अपनाना। और अब तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, हम अपनी जिंदगी में सत्संग को लाएं कैसे। इसके लिए दो बहुत ही आसान रास्ते बताए गए हैं। पहला है स्वाध्याय, यानी रोज महान लोगों की प्रेरणा देने वाली पुस्तकें पढ़ना। ये घर बैठे सत्संग करने जैसा है ना। और दूसरा, अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ समय बिताना, उनसे सीखना। सत्संग में पारस पत्थर जैसी ताकत होती है जो किसी को भी बदल सकती है। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि हम सब गीली मिट्टी की तरह हैं, और सत्संग वो सांचा है जो हमें एक बेहतर आकार दे सकता है।
आज हमारे सामने पूज्य गुरुदेव की एक ऐसी बात है जो दिमाग पर सीधा असर करती है। वो कहते हैं कि इंसान गीली मिट्टी जैसा होता है, आप उसे जिस भी माहौल में रखेंगे वो वैसा ही आकार ले लेगा। तो बड़ा सवाल ये है कि हमारे आसपास का ये माहौल, ये सांचा बनाता कौन है और क्या हम इसे बदल सकते हैं।
चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं।
बिल्कुल।
और ये विचार स्वाध्याय और सत्संग पुस्तक से है, और ये हमारे व्यक्तित्व की नींव को ही हिला देता है। पूज्य गुरुदेव का पहला बड़ा विचार यही है कि हमारा मॉरल कंपास, मतलब सही गलत की समझ, वो कोई अंदरूनी चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे माहौल द्वारा हमें इंस्टॉल की जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दो बिल्कुल नेक इरादे वाले लोग भी अपने अपने माहौल की वजह से एक दूसरे के धुर विरोधी हो सकते हैं।
एकदम सही कहा। पूज्य गुरुदेव एक सटीक उदाहरण देते हैं। एक जैनी के लिए किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना सबसे बड़ा धर्म है।
हाँ, परम धर्म है।
वहीं एक मुसलमान के लिए कुर्बानी देना ईश्वर की आज्ञा का पालन है। स्रोत बताते हैं कि दोनों अपनी अपनी मान्यताओं में पूरी तरह सच्चे हैं, पर उनके कर्म
एकदम अलग है।
बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारी नैतिकता भी हमारे परिवेश की ही देन है।
और ये सिर्फ विचारों तक ही तो सीमित नहीं होगा, ये तो हमारे पूरे व्यवहार को गढ़ता होगा। वो भेड़ियों द्वारा पाले गए बच्चों वाली कहानियाँ सच लगने लगती हैं फिर।
वो कहानियाँ इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। उन बच्चों को जब जंगल से पकड़ा गया तो वे भेड़ियों के तरह ही गुर्राते थे, कच्चा मांस खाते थे।
अच्छा।
इंसान होते हुए भी उनमें इंसानी गुण नहीं थे, क्योंकि उन्हें वैसा माहौल ही नहीं मिला। इससे ये साबित होता है कि मनुष्य सचमुच वैसा ही बन जाता है जैसी उसे संगति मिलती है।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर सब कुछ माहौल पर ही निर्भर है तो फिर व्यक्ति की अपनी इच्छा शक्ति की क्या भूमिका है? क्या हम सिर्फ अपने माहौल के गुलाम हैं?
ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ये नहीं कहते कि हम गुलाम हैं, बल्कि ये समझाते हैं कि माहौल का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है, और इसी मनोविज्ञान को समझकर हमारे धर्माचार्यों ने सत्संग की व्यवस्था बनाई थी।
सत्संग?
हाँ, सत्संग उस गुलामी को तोड़ने का एक जरिया है।
जब हम सत्संग शब्द सुनते हैं तो मन में साधु संतों की सभा की एक तस्वीर सी बनती है, पर ऐसा लगता है कि पूज्य गुरुदेव इस शब्द को ज्यादा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं ना।
हाँ बिल्कुल। यहाँ सत्संग का मतलब सिर्फ कोई धार्मिक सभा नहीं है, बल्कि हर वो अच्छा प्रभाव है जिसे हम अपने जीवन में शामिल करते हैं।
जैसे
अच्छी पुस्तकें पढ़ना हो, महान लोगों के बारे में जानना, या फिर अच्छे दोस्तों के साथ वक्त बिताना।
तीर्थ यात्राओं का मकसद भी यही था, अलग अलग जगहों पर जाकर श्रेष्ठ व्यक्तियों और सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आना,
ताकि हमारे ऊपर एक अच्छा असर पड़े।
बिल्कुल। और जो लोग मान लीजिए तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए क्या रास्ता है?
उनके लिए है स्वाध्याय, यानी सेल्फ स्टडी।
हाँ।
महान पुरुषों के ऊंचा उठाने वाले विचारों को, उनकी रचनाओं को रोज पढ़ना घर बैठे ही सत्संग करने जैसा है। जैसे शरीर को पौष्टिक भोजन चाहिए, वैसे ही हमारे मन को, हमारे सूक्ष्म शरीर को भी ऊंचे विचारों का पौष्टिक आहार चाहिए। स्वाध्याय वही आहार है।
तो मतलब हम सचेत होकर अपने लिए एक बेहतर माहौल बना सकते हैं।
हाँ।
पर यह असर होता कितना शक्तिशाली है। मैंने श्रोत में विश्वामित्र और वशिष्ठ की एक कहानी पढ़ी जो हैरान करने वाली है।
हाँ, वो कहानी तो सत्संग की शक्ति का सार है। जब ऋषि विश्वामित्र ने अपनी 1000 साल की तपस्या का फल ऋषि वशिष्ठ को देना चाहा, तो वशिष्ठ ने बदले में अपने सिर्फ एक पल के सत्संग का पुण्य दे दिया।
सिर्फ एक पल का?
हाँ। और जब न्याय के लिए शेषनाग के पास गए तो विश्वामित्र की 1000 साल की तपस्या का पल्ला हल्का रह गया और वशिष्ठ के एक क्षण के सत्संग का पल्ला भारी निकला।
ये कहानी तो कमाल है, पर यह साबित करती है कि सत्संग में कोई जादुई शक्ति है। पूज्य गुरुदेव ने क्या यह समझाया है कि ये हमारे दिमाग पर, हमारी साइकोलॉजी पर असल में काम कैसे करता है?
हाँ, इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक आधार है। अच्छी संगति हमारे अंदर बैठी हीन भावना की ग्रंथियों को, हमारे कॉम्प्लेक्स को धीरे धीरे खोल देती है। ठीक वैसे ही जैसे एक मनोवैज्ञानिक किसी मरीज का इलाज करता है। यह हमारे भटके हुए जीवन को एक मकसद देती है। इसके लिए एक पुराना दृष्टांत है भृंगी कीट न्याय का।
भृंगी कीट न्याय, ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी लगता है, इसका क्या मतलब है?
आसान भाषा में कहें तो आप जिस चीज पर लगातार ध्यान लगाते हैं ना, धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाते हैं। जैसे एक कीड़ा भृंगी नाम के दूसरे कीड़े का ध्यान करते करते और उसके डर से खुद भी भृंगी जैसा ही बन जाता है।
अच्छा, एक तरह का मानसिक ऑस्मोसिस?
बिल्कुल। जब हम लगातार अच्छे लोगों और अच्छे विचारों के संपर्क में रहते हैं तो उनके गुण अनजाने में ही हमारे अंदर आने लगते हैं।
तो इस सारी बातचीत का निचोड़ ये है कि हम कौन हैं और क्या बनेंगे, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपना समय किसके साथ और कैसे विचारों के साथ बिताते हैं। हम अपने माहौल के निर्माता भी हैं और उत्पाद भी।
एकदम। इसीलिए हमें बहुत सावधानी से अपने आसपास का माहौल चुनना चाहिए, बुरे प्रभावों से बचना और अच्छे प्रभावों की छाया में रहने का लगातार प्रयास करना ही व्यक्तित्व को निखारने का एकमात्र रास्ता है।
स्वाध्याय और सत्संग के मौके कभी छोड़ने नहीं चाहिए।
बिल्कुल।
और जाते जाते पूज्य गुरुदेव एक बड़ी दिलचस्प पहेली हमारे सामने छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं, बिना आचार विचार बदले हम सत्संग के योग्य नहीं बनते, और बिना सत्संग के हमारे आचार विचार नहीं बदलते। तो सोचने वाली बात यह है कि इस चक्र को कहां से तोड़ा जाए। बदलाव की शुरुआत खुद के अंदर एक छोटे से सुधार से हो, या अपने आसपास के माहौल को बदलने के एक बड़े प्रयास से। कल्पना कीजिए कि दो छोटे बच्चे जंगल में खो जाते हैं। सालों बाद वो मिलते हैं, लेकिन वो बच्चों जैसे नहीं हैं। वो चार पैरों पर चलते हैं, कच्चा मांस खाते हैं और इंसानों की तरह बोलने की जगह भेड़ियों की तरह गुर्राते हैं।
ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है।
हाँ, और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। हम जो हैं वो हम क्यों हैं? क्या हमारा व्यक्तित्व हमारा अपना है, या हम सिर्फ अपने आसपास के माहौल की एक परछाई हैं? आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे हाथ में हैं पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की एक अद्भुत रचना का दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है मनुष्य पर परिस्थितियों का प्रभाव।
और हमारा मकसद है इस विचार को पूरी तरह से खोलकर समझना कि हमारा माहौल हमें कैसे बनाता है और क्या हमारे पास इसे बदलने की कोई शक्ति है।
बिल्कुल। तो ये सवाल आज के दौर में तो और भी जरूरी हो गया है ना। हम सब सोशल मीडिया, खबरों और तरह तरह की विचारधाराओं से 2400 घंटे घिरे हुए हैं।
बहुत ज्यादा। और पूज्य गुरुदेव इस अध्याय में एक बहुत ही बुनियादी सच की तरफ इशारा करते हैं, जिसे वो सत्संग कहते हैं। उसका मतलब सिर्फ धार्मिक प्रवचन सुनना नहीं है।
अच्छा।
सत्संग का मतलब है अच्छी संगति या अच्छा प्रभाव, और इसका उल्टा भी सच है, कुसंग यानी बुरी संगति। जन्म के बाद हम जो कुछ भी बनते हैं, हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, हमारी मान्यताएं, वो सब संगति का ही नतीजा है।
तो चलिए इस विचार की पहली परत हटाते हैं। पूज्य गुरुदेव विद्वान बेकन का एक कथन दोहराते हैं कि मनुष्य कोरे कागज के समान है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं।
बहुत गहरे।
इसका मतलब तो ये हुआ कि हम कोई तयशुदा पर्सनैलिटी लेकर पैदा नहीं होते।
बिल्कुल। और आज का विज्ञान भी आप देखिए इसी बात को मानता है। जिसे पूज्य गुरुदेव कोरा कागज या गीली मिट्टी कह रहे हैं, आज का न्यूरोसाइंस उसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है।
न्यूरोप्लास्टिसिटी,
हाँ, ये एक वैज्ञानिक सच है कि हमारा दिमाग हमारे अनुभवों और माहौल के हिसाब से लगातार खुद को बदलता रहता है, नए कनेक्शंस बनाता रहता है। मतलब हमारे दिमाग की वायरिंग फिक्स नहीं है।
वाह, यानी ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल हकीकत है।
हाँ, और ये समझने के लिए कि इसका असर कितना गहरा होता है, पूज्य गुरुदेव दो बहुत ही मजबूत उदाहरण देते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के उलट हैं। एक सच्चा जैनी जिसके लिए किसी भी जीव को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है, वो अहिंसा को अपना परम धर्म मानता है, और दूसरी तरफ एक सच्चा मुसलमान जो ईश्वर के नाम पर पशुओं की कुर्बानी को अपना धार्मिक कर्तव्य समझता है।
अच्छा,
अब देखिए, दोनों अपने अपनी जगह पर पूरी तरह ईमानदार हैं, दोनों अपने विश्वास में सच्चे हैं, लेकिन उनके सच एक दूसरे से एकदम अलग हैं।
ये कमाल का उदाहरण है क्योंकि ये दिखाता है कि जिसे एक व्यक्ति धर्म समझ रहा है वही काम दूसरे के लिए अधर्म है।
बिल्कुल,
और यही
सबसे बड़ा सवाल है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये गुत्थी अभी सुलझी नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, हमारी सही और गलत की परिभाषाएं वो हमारे माहौल से आती हैं। हमने जो देखा, जो सुना, जिस समाज में हम पले बड़े, उसी ने हमारे दिमाग में ये परिभाषाएं गढ़ी हैं।
और ये सिर्फ धर्म या बड़ी बड़ी बातों पर ही लागू नहीं होता होगा, रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसका असर दिखता होगा, है ना?
अरे बहुत ज्यादा। पूज्य गुरुदेव कुछ बड़े दिलचस्प उदाहरण देते हैं, जैसे यूरोप के लोग मलत्याग के बाद कागज से सफाई को सही मानते हैं।
हाँ।
जबकि भारत में ज्यादातर लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं और कागज से सफाई की बात सोचकर भी उन्हें अजीब लगता है। पूज्य गुरुदेव एक यूरोपीय नारी का तर्क भी बताते हैं जो कहती है कि एक लोटा पानी तो गंदगी को और फैला देगा।
ये तो है।
अब कौन सही है कौन गलत, दोनों अपने अपने नजरिए से सही हैं।
सही बात है। और गोबर वाला उदाहरण भी तो है। हम लोग गांव में घर को गोबर से लीप कर उसे पवित्र मानते हैं, पूजा पाठ के लिए तैयार करते हैं, पर किसी पश्चिमी देश के व्यक्ति के लिए
वो बस एक जानवर की गंदगी है, वो शायद ऐसे घर में कदम भी न रखना चाहे।
बिल्कुल।
और सोचिए, भारत में एक समय था जब विधवा विवाह को एक भयंकर पाप समझा जाता था, जबकि दुनिया की कई दूसरी संस्कृतियों में ये एक बहुत ही सामान्य बात थी। नग्न रहना कहीं त्याग और तपस्या का प्रतीक है
तो कहीं असभ्यता की निशानी।
हाँ, इन सब उदाहरणों का निचोड़ एक ही है, हमारा सच हमारे माहौल का बनाया हुआ है। हम सब एक एक सांस्कृतिक बुलबुले में जी रहे हैं और हमें लगता है कि हमारा बुलबुला ही पूरी दुनिया है।
अगर ये सच है और जैसा कि शुरू में भेड़िए वाले बच्चों की कहानी से पता चलता है, तो ये थोड़ा डरावना भी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर एक ही माता पिता के दो बच्चों को बिल्कुल अलग अलग माहौल में पाला जाए, मान लीजिए एक को भारत के किसी गांव में और दूसरे को न्यूयॉर्क में, तो बड़े होकर वो सिर्फ भाषा या कपड़ों में ही नहीं
बल्कि सोच और स्वभाव में भी बिल्कुल अलग इंसान होंगे।
बिल्कुल अलग,
वे बिल्कुल अलग इंसान होंगे। उनकी दुनिया को देखने का नजरिया, उनके रिश्ते, उनकी महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ अलग होगा।
और भेड़िए वाले बच्चों की घटना तो इसका सबसे एक्सट्रीम उदाहरण है,
सबसे चरम उदाहरण है। उन बच्चों के अंदर इंसान की तरह व्यवहार करने की कोई प्रवृत्ति ही नहीं बची थी। उन्हें इंसानी समाज में वापस लाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो कभी पूरी तरह डल नहीं पाए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मनुष्य सच में गीली मिट्टी है जिसे माहौल किसी भी आकार में ढाल सकता है।
ये विचार मन पर बहुत भारी पड़ता है।
इसका एक और मतलब निकलता है कि न जाने कितने प्रतिभाशाली लोग,
जिनमें शायद आइंस्टाइन या कलाम बनने की क्षमता थी, सिर्फ गलत माहौल और बुरी संगति की वजह से अपनी जिंदगी छोटे मोटे कामों में या अपराध में गंवा रहे हैं। कितनी इंसानी क्षमता हर रोज ऐसे ही बर्बाद हो जाती होगी।
ये इस सिद्धांत का सबसे दुखद पहलू है। आचार्य फ्राइड ने भी यही कहा था कि मनुष्य गीली मिट्टी के समान है जो प्रभाव के ढांचे में ढलता और ढाला जाता है। हम सबने देखा होगा कि कई तेज दिमाग वाले लोग भी अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ इसलिए छोटे मोटे कामों में लगा देते हैं क्योंकि उनके आसपास के लोगों ने उन्हें कभी बड़ा सोचने के लिए प्रेरित ही नहीं किया।
उन्हें जिस रास्ते पर धकेल दिया गया वे उसी पर चलते रहे।
हाँ, बिना ये सवाल किए कि क्या ये रास्ता उनके लिए सही है।
तो यहाँ पर चर्चा एक बहुत जरूरी मोड़ पर आती है। अगर हम परिस्थितियों के इतने ही गुलाम हैं, अगर हमारा माहौल ही हमें कंट्रोल करता है, तो क्या हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है? क्या हम बस कठपुतलियाँ हैं? या प्राचीन भारतीय विचारकों ने इस समस्या का कोई हल खोजा था?
उन्होंने न सिर्फ हल खोजा बल्कि इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाया। भारतीय धर्माचार्य इस मनोवैज्ञानिक सच को बहुत गहराई से समझते थे। वो जानते थे कि इंसान आदतों और माहौल का गुलाम है। इसीलिए उन्होंने व्यक्ति को समय समय पर उसके रोजमर्रा के माहौल से निकालकर एक बेहतर माहौल में ले जाने की व्यवस्था बनाई। इसी सोच से तीर्थयात्रा और सत्संग जैसी परंपराओं का जन्म हुआ।
एक मिनट, तो तीर्थयात्रा का असली मकसद सिर्फ किसी मंदिर में जाकर दर्शन करना नहीं था, ये तो एक तरह का एनवायरनमेंट चेंज प्रोग्राम था।
बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, एनवायरनमेंट चेंज प्रोग्राम। तीर्थ सिर्फ वो जगहें नहीं थी जहां सुंदर मंदिर हो, तीर्थ ऐसी जगहें होती थी जहां का प्राकृतिक वातावरण अच्छा हो और सबसे जरूरी जहां ऊंचे दर्जे के तपस्वी, साधक और विद्वान रहते हों।
अच्छा,
तीर्थयात्रा का असली मतलब था कुछ दिनों के लिए अपने रोज के छोटे मोटे झगड़ों, चिंताओं और लालच के माहौल से निकलकर उन आत्मज्ञानी पुरुषों की संगति में रहना, उनके साथ बैठना, उनके विचारों को सुनना,
उनके आभामंडल में रहना।
हाँ,
ताकि उनके विचार और ऊर्जा का कुछ हिस्सा हम पर भी असर करे। जैसे एक चुंबक के पास रहने से लोहा भी कुछ देर के लिए चुंबक बन जाता है।
एकदम सही। उन महात्माओं की संगति से जो सकारात्मक प्रभाव मन पर पड़ता था, जो अच्छी आदतें अपनाने की प्रेरणा मिलती थी, वही असली पुण्यफल था।
ये कोई जादुई चीज नहीं थी, ये शुद्ध मनोविज्ञान था।
बिल्कुल, एक बेहतर माहौल में रहकर अपनी दिमागी और आत्मिक बैटरी को रिचार्ज करना।
ये तो बहुत तर्कसंगत लगता है, लेकिन आज के समय में ये कितना व्यवहारिक है। ज्यादातर तीर्थ स्थान तो बहुत भीड़भाड़ वाले और व्यावसायिक हो गए हैं, वहाँ शायद ही वैसे साधक मिले। तो क्या ये सिद्धांत आज भी काम करता है?
जगहों का स्वरूप भले ही बदल गया हो, लेकिन सिद्धांत आज भी उतना ही सच है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज अच्छा भोजन चाहिए, वैसे ही हमारे मन को, हमारी सोच को स्वस्थ रखने के लिए रोज सत्संग रूपी आहार की जरूरत है।
और पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि आज के युग में इसके दो सबसे कारगर तरीके हैं।
हाँ,
वो क्या है?
पहला है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है रोज थोड़ा समय निकालकर दुनिया के श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के ऊंचा उठाने वाले विचारों को पढ़ना। जब आप किसी महान विचारक की पुस्तक पढ़ते हैं तो आप एक तरह से उनके साथ एक निजी बातचीत कर रहे होते हैं।
वाह,
आप घर बैठे उनकी संगति का लाभ उठा रहे होते हैं। मतलब आपका बुकशेल्फ आपका व्यक्तिगत सत्संग हॉल बन सकता है।
ये बात तो है, जब मैं कोई अच्छी पुस्तक पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे लेखक मुझसे सीधे बात कर रहा है। तो स्वाध्याय हुआ घर बैठे सत्संग, और दूसरा तरीका?
दूसरा है प्रत्यक्ष संगति, यानी जानबूझकर ऐसे लोगों की सोहबत में रहना जो आपसे बेहतर हो, जिनकी सोच सकारात्मक हो, जिनके जीवन में कोई आदर्श हो। ये दोस्त हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे मिलकर आपको प्रेरणा मिलती हो।
जैसे पारस पत्थर के छूने से लोहा सोना बन जाता है।
हाँ, ये कहावत सिर्फ एक कहावत नहीं है, अच्छी संगति एक साधारण व्यक्ति के जीवन को भी बदल सकती है।
इस संगति की कीमत को समझाने के लिए पूज्य गुरुदेव एक बहुत प्रसिद्ध कथा का जिक्र करते हैं, विश्वामित्र और वशिष्ठ की कथा।
ये बड़ी दिलचस्प लगती है।
हाँ, ये कथा सत्संग के मूल्य को बहुत नाटकीय ढंग से समझाती है। कहानी यह है कि एक बार विश्वामित्र ने वशिष्ठ को अपनी हजार वर्षों की तपस्या का फल दान कर दिया,
और बदले में वशिष्ठ ने उन्हें सिर्फ एक क्षण के सत्संग का फल दिया।
बस एक क्षण का?
हाँ।
विश्वामित्र को लगा कि ये तो मेरा घोर अपमान है, हजार साल की मेहनत के बदले बस एक पल।
स्वाभाविक है, किसी को भी बुरा लगेगा।
फिर क्या हुआ?
वो न्याय के लिए शेषनाग के पास गए, जिन्होंने पृथ्वी को अपने फन पर उठा रखा है। शेषनाग ने कहा, ठीक है, फैसला हो जाएगा, आप दोनों में से जो भी अपनी वस्तु के बल पर पृथ्वी का बोझ उठा लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा।
अच्छा।
विश्वामित्र ने अपनी हजार साल की तपस्या का पूरा बल लगा दिया, लेकिन पृथ्वी हिली भी नहीं।
हिली भी नहीं?
नहीं। फिर वशिष्ठ ने कहा, अब तुम उस एक क्षण के सत्संग का बल लगाओ जो मैंने तुम्हें दिया है। और जैसे ही विश्वामित्र ने उस सत्संग के बल का स्मरण किया, पृथ्वी ऊपर उठ गई।
अरे वाह।
तब ये फैसला हुआ कि हजार वर्ष की तपस्या से भी एक क्षण का सत्संग श्रेष्ठ है।
ये कहानी सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन कोई कह सकता है कि ये एक अतिशयोक्ति है, एक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। व्यावहारिक रूप से एक घंटे की अच्छी बातचीत सालों की मेहनत से ज्यादा कीमती कैसे हो सकती है?
बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, ये मात्रा मतलब क्वांटिटी का नहीं, दिशा यानी डायरेक्शन का सवाल है।
दिशा?
हाँ। हो सकता है आप हजार साल तक मेहनत करें लेकिन गलत दिशा में, वो सारी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन एक क्षण के सत्संग में किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिली एक सही सलाह, एक आहा मोमेंट, वो आपकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है।
सही बात है।
वो एक विचार आपकी बाकी की पूरी जिंदगी की मेहनत को सही रास्ते पर लगा सकता है। इस नजरिए से देखें तो उस एक क्षण की कीमत सच में अनमोल है।
आप समझो, ये एक पैराडाइम शिफ्ट जैसा है, एक सोच जो आपके देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। और यह एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है, जिसे पूज्य गुरुदेव ग्रंथियों का निर्माण कहते हैं। ये क्या है?
ये माहौल का हमारे अवचेतन मन पर असर है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा धोखेबाज, मतलबी और शक करने वाले लोगों के बीच रहे तो क्या होगा?
वो भी वैसा ही बन जाएगा, शक करने लगेगा सब पर।
हाँ, धीरे धीरे उसे लगने लगेगा कि पूरी दुनिया ही ऐसी है। वो हर किसी पर शक करेगा, किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। उसके अंदर एक अविश्वास की ग्रंथि बन जाएगी, एक गांठ।
और इसका उल्टा भी सच होगा, अगर वो अच्छे सेवाभावी लोगों के बीच रहे तो उसे इंसानियत पर भरोसा होने लगेगा।
बिल्कुल, इसका एक बहुत ही दुखद और ऐतिहासिक उदाहरण पूज्य गुरुदेव भारत में अछूत मानी जाने वाली जातियों का देते हैं। सदियों तक समाज से मिली नफरत, तिरस्कार और बुरे संकेतों ने उनके अंदर एक गहरी आत्महीनता की ग्रंथि यानी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बना दिया। ने खुद लगने लगा कि हम किसी लायक नहीं हैं। इस नकारात्मक माहौल ने उनकी क्षमताओं को कुचल दिया और उन्हें एक दबे हुए स्वभाव का बना दिया। ये वातावरण के प्रभाव का एक भयंकर परिणाम है।
तो क्या इन गहरी मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों या गांठों का कोई इलाज है?
हाँ, और इलाज वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सत्संग। जब उसी व्यक्ति को एक संत समाज में या किसी प्रेमपूर्ण माहौल में सम्मान और बराबरी का व्यवहार मिलता है, तो उसके दिल की वो गांठें धीरे धीरे खुलने लगती हैं।
अच्छा।
जैसे कोई मनोचिकित्सक प्यार और सहानुभूति से मरीज के मन के राज जानकर उसका इलाज करता है, वैसे ही संतों और अच्छे लोगों का प्रेमपूर्ण व्यवहार हमारे अंदर के जख्मों को भरता है। व्यक्ति को महसूस होता है जैसे दिल पर से कोई भारी बोझ उतर गया हो।
तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये निकल रहा है कि हम एक कोरे कागज या गीली मिट्टी की तरह हैं। ये एक सच्चाई है, चाहे हमें पसंद हो या ना हो।
सही बात है।
हमारा माहौल, हरी संगति हमें लगातार आकार दे रही है। ये हमें बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए जिम्मेदारी वो हमारी है कि हम होशपूर्वक चुनें कि हम किस तरह के प्रभाव अपने अंदर आने देते हैं।
एकदम सही। और ये कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि जीवन भर चलने वाली साधना है। लगातार बुरी संगति और बुरे प्रभावों से बचना और जानबूझकर अच्छी संगति और अच्छे विचारों यानी स्वाध्याय को अपने जीवन में शामिल करना, यही अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का सबसे कारगर तरीका है।
तो चलिए, इस गहरी बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने समझा कि हमारा व्यक्तित्व कितना लचीला है और हमारे परिवेश का उस पर कितना गहरा असर होता है। यह हमें बड़ी शक्ति भी देता है और बड़ी जिम्मेदारी भी।
और जाते जाते सभी के लिए एक विचार छोड़ते हैं। ये जानने के बाद कि हमारा माहौल और हमारी सोच एक दूसरे को बनाते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो जानबूझकर किया जा सकता है? कौन सी एक आदत, कौन सा एक व्यक्ति या कौन सी एक पुस्तक है जिसे जीवन में जोड़ा या हटाया जा सकता है, जो एक सकारात्मक बदलाव की पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर दे? वो पहला कदम क्या होगा जिससे खुद के बेहतर संस्करण को गढ़ने की शुरुआत हो सके?